हरि ओम। पूज्य प्रेमपुर जी महाराज, पूज्य अखंडानंद जी महाराज, पूज्य अद्वैतानंद जी महाराज, पूज्य श्री सोमदत्त जी, सभी को वंदन करते हुए जो आराधन महोत्सव है इस समय हमारे बीच में मुकेश जी पधारे हैं आचार्य जी के रूप में, तो वह मंगलाचरण से यह जो आराधन महोत्सव है उसका उनका पूरा शुभारंभ करेंगे। मैं विनती करूंगा कि वो आए।
हरि ओम। मां जज्जाग्रतो धूरमुदैति देवान्तधु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपशो मनीखिणो जग्ने क्रणवन्ति विदथे क्षुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो द्रतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं मा येन जघ्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन्द्रचः सामजजो गोखे जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मेश्च तग्गो सर्वमोतं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारभिरश्वानि वज्जन्मनुक्षाने नीयते भीसुर्विर्वाजिन इव रत्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्रथम माल्यार्पण से साधन महोत्सव का शुभारंभ होगा। मैं तिचिरवाला जी से, शौर्यवाला जी से विनती करूंगा कि वो पधारे। तत्पश्चात तिचिरवाला जी अपने भाव अर्पण करेंगे।
परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी को चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम, सोमदत्त जी को भी प्रणाम। आज से 29 साल पहले की बात है, महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तब यही समय था, सुबह में सत्संग हॉल में उसकी खबर आई और दोपहर को सब लोग, मैं और जगदीशपुरी जी महाराज और गणेश नारायण जी महाराज दिल्ली गए मुंबई से, और महाराज जी के वहां सभी उत्सव में भाग लिया। महाराज जी को जल समाधि दिए गई थी। सारा वृंदावन में महाराज जी को दर्शन देने के लिए सभी ठिकाने ले गए थे बिफोर जल समाधि हुई थी उसके पहले। अब संत महात्मा की बात ऐसी है कि हमें कभी ऐसा अभी तक नहीं लगा है कि स्वामी जी महाराज की प्रेजेंस हमारे में नहीं है। आप कहेंगे कैसे? आते ही महाराज जी की वाणी सुनने को हमको मिलती है, और 7:10 हो गया है यहां, तो 7:10 से 7:30 बजे तक स्वामी जी महाराज की टेप यहां रामायण पे चलती है। और प्रसंग भी ऐसा हुआ कि कल रावण का वध हो गया तो आज सब महाराज जी का हम उत्सव मनाते हैं, वो रामनवमी का भी उत्सव, रावण वध का भी उत्सव सब मनाते हैं। अब महाराज जी का जो सत्संग के बारे में बात थी कि अगर आप वृंदावन में हो, बंबई में हो, बम्बई में तो महाराज जी की बड़ी कृपा रही। मैं समझता हूं 5 से 6 महीना तक महाराज जी बम्बई में रहते थे, और महाराज जी की वाणी इतनी सरल, प्रसंग तो जो शास्त्र है वो शायद मुश्किल समझने में हो, महाराज जी की वाणी इतनी सरल थी कि हमारी समझ में आ जाए। और एक दूसरी बात भी थी, कोई कहे कि महाराज जी अभी हमको समझ में नहीं आता है, तो महाराज जी बताते थे फिक्र मत करो, सुनते सुनते तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा स्वामी जी महाराज बताते रहते हैं। और महाराज जी के सत्संग का महिमा की क्या बात करूं, मैं एक दफे रविवार के दिन महाराज जी का सत्संग में सुबह में न आ पाया और शाम को फ्लैट पर चले गए महाराज जी के विपुल को, और वहां मैं बैठा था, कई सत्संगी बैठे थे, महाराज जी भी कुछ प्रश्न पूछे नहीं तो अपने आप भी जो कुछ भी उपदेश देना हो वो करते रहते थे। तो एक सत्संगी ने बताया कि मेरे को कहा कि आप आज सुबह में सत्संग सुनने के लिए नहीं आया, मैंने कहा हाँ मैं नहीं आ पाया, मैं टेप सुन लूंगा। और महाराज जी का जवाब क्या था, सत्संग सुनना और टेप सुनने में एक ही बात नहीं है। तो ये तो है महाराज जी का। और दूसरा कि कोई ऐसा साल नहीं गया होगा कि जब मैं वृंदावन में गया हूं, पहले मैं सीताराम शरण जी महाराज अयोध्या जी के वहां उसके रामनवमी के प्रसंग पर जाता था, और उसके पहले कि आपके वर्ष मैं वृंदावन आके महाराज जी को प्रणाम करता हूं, तथा रहता था हूं थोड़े दिन। ऐसे सत्संग की महिमा हमको महाराज जी ने बताई थी, और अभी तक आज मैं समझता हूं कि करीब करीब 25-50 साल से ज्यादा समय हो गया मैंने सत्संग नहीं छोड़ा है। और मेरी सब सत्संगियों को, सब गुरुजियों को यही प्रार्थना हूं कि आप आशीर्वाद दें कि मैं अगले जन्म में भी सत्संग कर सकूं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।
संतों के चरणों में वंदन करते हुए, हमने पुराणों में कथाओं में बहुत सुना हुआ है कि जब भी कोई अवतार होता है तो पूरी सृष्टि का रूप बदल जाता है, पूरी सृष्टि अपनी अनुभूति अलग रीत से कर रही है, पेड़ पौधे सब बातें होती हैं। उसी प्रकार जब भी वह निर्वाण की ओर जाते हैं तो भी यह सृष्टि अपना कमाल दिखाती है। संतों की एक विद्वत्ता रहती है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें वो रखे जाते हैं। महाराज जी जब भी उन्होंने अपरमलीन हुए तभी यहां ही प्रेमपुरी में कई बातें ऐसी अपने बीच में हुई, कई लोग यहां रुदन करते हुए दिखे गए थे कि जैसे घर के व्यक्ति चले गए। यहां प्रेमपुरी में जो वातावरण था अगर आपने देखा होगा, क्योंकि पिताजी नहीं गए थे और हम लोग यहीं आए थे, यहां कुछ कार्यक्रम पूरा संभालना था क्योंकि जो पब्लिक थी वो भी बहुत दुखी थी, तो उसी में यहां बैठकर जो अनुभव हमने किया होगा, या प्रेमपुरी में जितने भी सत्संगी स्वाध्यायी जो भी प्रवचन सुनने आते थे, नहीं आते थे या दूसरे में भी आते थे, सब यहां इकट्ठे होके अपने जो भाव प्रकट कर रहे थे कि किस तरह से महाराज जी उनके जीवन में रहे। तो जीवन में प्रागट्य और निर्वाण दो ऐसी चीजें हैं कि उसके बीच में जो अपना जीवन काल है वह हम किस तरह से गुजारे, और संतों के चरणों में आकर जब हम बैठते हैं तो यह अनुभूति करते हैं कि हम बहुत ही शांत और सुझे हुए हैं और हम कुछ जीवन में अच्छी बातें कर सकते हैं। महाराज जी का जो निकटता रही वह उसका तो एक ही मैं बात कर सकता हूं, जैसे सोमदत्त जी के दादाजी रहे और गुरु भी रहे उसी प्रकार मेरे हमारे पिताजी जो हरिभाई ड्रेसवाला थे उनके भी गुरु के रूप में रहे, तो हमारे भी वो दादा गुरु थे। तो हमारे में और सोमदत्त जी में इतना तो, बाकी तो हमारे में बहुत फर्क है। क्योंकि जो हम सुनाते हैं वो खाली सुनाते हैं, और वो जो उनकी वाणी से जो हम सुनते हैं वो अद्भुत रहता है, पूरी पाकट वाणी है। हमारा जी अद्वैतानंद जी महाराज की तो क्या बात करें, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन में और अन्य प्रवचनों में जभी वो आते हैं और उनकी वाणी हमें प्राप्त होती है तो बहुत ही आनंद होता है। सालों साल से जब से यह संस्था बनी होगी तब से पूज्य महाराज जी यहां पधारते हैं और आज वो हमारे बीच में हैं, तो बहुत ही आनंद आता है कि ऐसे संत हमारे बीच में आ रहे हैं। जीवन में यह सब बातें घटनाएं होती रहती है। जगदीशपुरी महाराज अचानक ही कल उनकी तबीयत में थोड़ी तब्दीली आई। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, मुझे फोन आया प्रकाश का कि भी तकलीफ है, और उनको हरकिशन में दाखिल किया गया। तो जीवन का एक क्रम है कि कुछ न कुछ जीवन में घटनाएं ऐसी बनती हैं कि हम लोग विचलित हो जाते हैं। प्रातः प्रवचन के लिए पूज्य महाराज जी को प्रार्थना की, और अन्य दिवसों में भी जगदीशपुरी जी कब आएंगे किस तरह से, मेरे ख्याल से तो 2-3 दिन में वापस आ जाना चाहिए, कुछ खास नहीं है। कल मिला था मैं वहां जाके। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनका स्वास्थ्य जगदीशपुरी जी महाराज का बहुत ही जल्द अच्छा होके हमारे बीच में वह आए। तब तक प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन पूर्व पूज्य अद्वैतानंद जी महाराज द्वारा होगा, और जो और भी एक संत आने वाले थे उनका भी नाम जगदीशानंद जी है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे, वो तुलसी निवास से यहां आने वाले थे। तो सभी के चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो आज का संचालन का कार्यक्रम है हमारे परम प्रिय अखंडानंद जी महाराज के ही जो कृपा पात्र है उनके परिवार के हिसाब से और उनके ज्ञान के हिसाब से, और एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि जो बाबा जी हमारे बीच में हमेशा आते थे वह भी अभी उन्होंने भी भगवे संत संन्यास ले लिया है। और अद्भुत मैं ये समझ सकता हूं कि जब भी हमने उनको गृहस्थ के रूप में हमेशा देखा था यहीं यही सोफे पर बैठकर, तो अभी जब भी वह संन्यास ग्रहण किया होगा तो जो अखंडानंद जी महाराज की ही प्रतिकृति जैसे होंगे, तो ऐसे जो सन्यासी संत हमारे बीच में, हम हर वर्ष बाबा जी के रूप में यहां आते थे और उनके ही परिवार के, उनको यहां से वंदन करते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा सुंदर जी से संचालन संभाले। उसके पूर्व एक बात भी कह दूं कि जो यहां हमेशा कुछ कुछ बुक्स का जो आलोचन यहां होता है जो, तो उसमें विमोचन जो होता है थोड़ा सा समझ लेना, हमारे में फर्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का नशा उतरता नहीं और सीधा महाराज, ठीक है। तो जो विमोचन होने जा रहा है तो उसमें अखंडानंद जी महाराज का ये कहना था कि मेरी जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह ईश्वरीय, मुझे जो भी समझ में आई उस तरह से ईश्वरीय वाणी का मैंने लिख रहा हूं, तो यह जो ग्रंथ है उसका कोई भी अनुवाद करे, नहीं तो यह रिस्ट्रिक्ट रहता है कि मेरी कॉपी कोई न कर सके, इस तरह से बहुत रहता है। मैंने उन्होंने फ्री कर दिया कि ईश्वरीय वाणी है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी ग्रंथ इसको छाप सकता है किसी भी तरह से दुनिया भर से। तो यह एक पवित्र ईश्वरीय वाणी रहती है, तो उनका जो यहां विमोचन होगा और नीचे काउंटर भी लगा होगा, मेरे से ज्यादा ललित अच्छा बोल रहा है।
इस आराधन महोत्सव पर महाराष्ट्र का जो भी साहित्य है उसके ऊपर 50% की छूट है आज, और जो पुस्तकें नीचे नहीं है आप अपना, नरेश भाई नीचे हैं उनको ऑर्डर लिखवा दीजिए, तो या तो आप विपुल से ले सकते हैं, नहीं तो प्रेमपुरी आश्रम में भी वो सोमवार को आके दे सकते हैं। उनको बता देना कि आपको क्या सूट करता है। लेकिन जितने से जितनी पुस्तक महाराष्ट्र की पूरी पूरा साहित्य उस सबके ऊपर 50% की छूट है।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन् आत्मनि मायया वहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम पूर्णानन्ददयादृशारसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदायनिःखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कळाम्यच्छतु समुद्रशास्त्राधिमृताभनीरम् आनियया वर्षति जीवनाय मेघायमानामतिरेवयस्य भजे तमानन्दमखण्डरूपम्। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी, जो हमारे आज के इस आराधन दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में आप सबकी ओर से मैं प्रणाम करता हूं और आपकी अनुमति से इस उत्सव का संचालन, ये संचालन नहीं है, एक तो चलना होता है, जीवन में हम चलते हैं और जरा जब आनंद आता है तो नृत्य करते हैं, तो ये संनर्तन है, ये जो जीव है ये नाच रही है। और किस लिए नाच रही है? कि अपने गुरु के उत्सव के अवसर पर इसका नर्तन हो रहा है। तो ये संचालन तो नाम है, व्यवहारिक रूप से जिह्वा का नर्तन है। और ये जब नर्तन आप देख रहे हैं तो देख कैसे रहे हैं? कि कानों से ये वाणी आपके कान में जा रही है, तो आपको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो ये एक दृष्टि है महाराष्ट्र की हमारे जीवन पे। हमारे मधुसूदन जी तिजिरुवाला बोल रहे थे महाराष्ट्र के बारे में और उन्होंने बताया कि सारा का सारा जीवन महाराष्ट्र का सत्संग में। और उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा कि टेप सुनने में वो प्रभाव नहीं पड़ता जो साक्षात सुनने में होता है। तो हम लोग तो महाराज जी के टेप हैं, महाराज जी की बात हम लोग सुनाते हैं और आप लोग बटन दबाते हैं कि आज ये अवसर है, ये उत्सव है, आप आओ सुनाओ। तो ये हम लोग तो टेप हैं, इसमें वो मजा नहीं आएगा जो महाराष्ट्र के सत्साहित्य में आप लोग सीधे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और महाराष्ट्र की कृपा, हमारे भाई गिरीश भाई पिताजी की याद कर रहे थे, आपके पिताजी इतने चतुर, इतने तीक्ष्ण बुद्धि के, किस महात्मा को, किस संत को किस चीज की आवश्यकता है उसका वो आकलन ठीक ठीक कर लेते और उसकी सेवा में किसी को नियुक्त करके उस काम को बिना अपना नाम आए और वो करा देते थे। ये चतुरता हमको मालूम है, ये बताते नहीं हैं, लेकिन बिना अपना नाम आए उस महात्मा को क्या आवश्यकता है और वो पीछे से करा देते थे, ये बात हमको मालूम है। एक बात, दूसरी बात, इनको याद होगा कि नहीं, बचपन की बात है, यहां पे करपात्री जी महाराज आए महाराज जी और उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन करना चाहा, तो उस समय कुछ उपद्रवी तत्व थे मुंबई में जो नहीं चाहते थे कि उत्थान हो या इस ढंग के यज्ञ हो। बात इनके पिताजी तक आई, उन्होंने चातुरी क्या निकाली कि जो हमारे कुली हैं, मजदूर वर्ग है, धोबी, धोने, धोबी को धोबी बोलते हैं,
धोबी,
धोबी दर्जी, इन लोगों का संगठन तैयार किया और इनके लोगों को जुटाया और उनको जुटा के कीर्तन में, कीर्तन के नाम पे, ये सब लोग यहां रात दिन 2400 घंटा कीर्तन होगा और उस ढंग से 100 200 500 हजार लोगों की व्यवस्था कर दी कि ये लोग कीर्तन करते रहेंगे और आप यज्ञ करें। तो इतनी जब भीड़ देखते थे वो लोग कीर्तन के नाम पे, तो कोई बास नहीं फटका और महीने भर या डेढ़ महीने वो यज्ञ चला और निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये हमारे हरि भाई देशवाला की चातुरी थी और वो काम निर्विघ्न, ये स्मरण है। और महाराष्ट्र के संरक्षण में, महाराष्ट्र की उपस्थिति में ये सब हुआ था। तो कृष्णानंद जी महाराज, महाराज कृष्णानंद, स्वामी कृष्णानंद जी, उनका पूर्वी लोगों पे बहुत यहां पे वो था, तो उनके उनका नाम पे ये काम हुआ। और कर्पाती जी बहुत आनंदित हुए, वो जब यज्ञ संपन्न हो गया लक्ष्मी नारायण बहुत बहुत प्रसन्न हुए और भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। ये महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र का ये 29वां, जैसा आपने बताया हमारे मधुसूदन भाई जी ने, कि ये 29वां आराधन महोत्सव है। 19 नवंबर 1987 के रात में, मतलब अपराह्न ब्रह्म मुहूर्त में महाराष्ट्र ने शरीर अपना छोड़ा और वो घटना उनको मालूम। और इसको जब हम तिथि में ले जाते हैं तो महाराष्ट्र की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है। तो इधर शुक्ल पक्ष है जब शरीर छोड़ने में और उधर कृष्ण पक्ष है अमावस्या श्रावण की। तो एक तरफ से कृष्ण शुरू होते हैं और श्वेत शुक्ल पक्ष मतलब शंकर जी, तो एक कृष्ण और एक शंकर। कृष्ण की नगरी में जन्म होता है और शिव की नगरी में जन्म होता है और कृष्ण की नगरी में तिरोधान होता है। तो ये जो जीवन और तिरोधान है सबके जीवन में लगा है। और यही प्रश्न था महाराष्ट्र का परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कि ये जो मुक्ति होती है ये जीवन में जीते जी होती है या मरने के बाद होती है, शरीर छूटने के बाद होती है मुक्ति, मुक्ति के बारे में प्रश्न था उड़िया बाबा जी महाराज से। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम इसमें बुद्धि क्यों लगाते हो कि मुक्ति कब होती है, ये जन्म और मृत्यु ही कहां होती है। जब जन्म और मृत्यु होगा तब न तुम मुक्ति की कल्पना करोगे, तो तुम जन्म और मृत्यु को ही मिथ्या मानो, तो मुक्ति दोनों ही मिथ्या है। महाराज जी कहे कि ये प्रश्न पूछने के पहले मैंने बहुत चिंतन किया था कि यदि बाबा बोलेंगे कि जन्म जीवन मुक्ति होती है तो मैं उत्तर मुक्ति की बात करूंगा, और जब बाबा बोलेंगे कि उत्तर मुक्ति होती है, मरणोपरांत मुक्ति होती है, तो मैं जीवन मुक्ति के बारे में बात करूंगा। कहे कि दोनों तट काट दिया। तो कहे कि ऐसा लोकोत्तर उत्तर हमको मिला ही नहीं था किसी से और हमारी कल्पना में भी नहीं था। तो कहे कि मैं तो लट्टू हो गया इस उत्तर को सुनते ही, मैं लट्टू हो गया बाबा पे। तो और फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र को उनका साथ मिला, महाराष्ट्र कहते हैं कि भगवान या ईश्वर के प्रकट होने के बाद भी मेरे जीवन में वो स्पष्टता नहीं आई जो उड़िया बाबा को मिलने के बाद आई। तो महात्मा का जीवन में प्राकट्य होना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर मिलेगा तो कितनी देर के लिए, कब तक के लिए? और उस ईश्वर अगर मिलता भी है, कई लोग तो ये चाहते हैं कि ईश्वर मिलेगा तो एक सूची रखते हैं कि ये मांगना है, महाराष्ट्र बोलते हैं। हम क्या महाराष्ट्र की हमें वाणी कह तो दिया कि टेप हूं, तो महाराज जी की वाणी निकलती है। तो महाराज जी कहते हैं कि कई लोग तो सूची रख के रखते हैं कि ईश्वर आएंगे तो ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। अब महाराष्ट्र वहां प्रश्न उठाते हैं कि तुम ईश्वर को चाहते हो कि तुम ईश्वर से चाहते हो? तो ये विचार करने की बात है कि हम ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर को चाहते हैं। तो हमारे जीवन में ईश्वर की चाहना बढ़े, ईश्वर से प्रेम हो, यही आराधना है। और यही आराधना हम गुरु के रूप में कर रहे हैं। अगर ईश्वर हमारे समक्ष आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो हम गुरु के लिए करें। ये हमको सिखाने के लिए इस ढंग के अवसर आते हैं कि हमारे हृदय में कितनी नम्रता है, हमारे जीवन में कितनी श्रद्धा है, हमारे जीवन में कितनी कितना सेवा भाव है, तो ईश्वर के प्रति वो सेवा भाव हमको प्रकट करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम के लिए हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, हम इष्ट की पूजा करते हैं, जो हम ठाकुर जी की पूजा घर में करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो हमारा अभ्यास बना रहे कि कल को ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, तो कुछ नहीं हो तो कम से कम वो क्रम याद रहे, उस क्रम से हम वो पूजा कर सकें। महाराष्ट्र जी कहते हैं कि जब उनके जीवन में प्राकट्य हुआ ईश्वर का, तो कहे कि ये जिह्वा हिलती नहीं थी, शरीर निश्चेष्ट हो गया, वो भी हिले नहीं, पलक झपकना बंद हो गई, सांस चल रही है कि नहीं चल रही ये भी भान नहीं रहा। तो अब उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसका अभ्यास जीवन में होना चाहिए। फिर महाराज जी ने कहा कि मानसिक पूजा हमारी शुरू हुई, और जैसे गजग्राह की वो लीला आपको ध्यान होगी भागवत की, कि वो उसने पकड़ लिया मगर ने पैर, तो इस संसार ने हमारा पैर पकड़ा हुआ है, हमारी इच्छाएं धसी हुई हैं इसमें, और ऐसे में अगर ईश्वर का प्राकट्य होता है तो हमारी पूजा कैसे होगी? तो वो मानसी पूजा का वहां पे विधान है। अलग से भी महाराष्ट्र ने एक दैवी साधना और मानसी पूजा करके छोटा सा ग्रंथ लिखा है, और भक्ति सर्वस्व करके एक ग्रंथ है, उसमें पूरा का पूरा, उसमें तो महाराज जी ने हृदय उड़ेल दिया है कि आपको राम की पूजा करनी है तो कैसे करो, कृष्ण की पूजा करनी है तो कैसे करो, शिव की पूजा करनी है तो कैसे करो, कौन कौन से मंत्र हैं, वैदिक मंत्र जो विधिक हैं वो मंत्र महाराष्ट्र ने वहां उल्लेख कर दिए हैं सारे के सारे। लेकिन उसके बाद ये है कि जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और उसी से सब कुछ प्राप्त होगा, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। वो बातें पढ़ने के लिए ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, पर मनमाना मंत्र नहीं उठाना चाहिए, मनमानी पूजा पद्धति नहीं उठानी चाहिए। जो आपके गुरु ने विहित किया है जीवन के लिए उसी में कल्याण है, इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए। ये बातें महाराष्ट्र की हैं। अच्छा, महाराज जी ने बताया कि ये जो मनमाना मंत्र है ये कब तक काम करता है, कि जब तक उससे हमको जो हमारी इच्छाएं हैं पूरी हो रही हैं। महाराज जी ने बहुत मजा लिया है इन बातों का। महाराज जी कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं बांके बिहारी जी के यहां और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और लेते हैं क्या, उस समय उस जमाने में आ जाता रहा होगा 5 रुपए का फूल और 5 रुपए का पेड़ा, अब आजकल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, और लेके कहते हैं कि बिहारी जी के पास हाथ लेके झाड़ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमारा ये काम करना है। तो अब वो बिहारी जी तो चुप हैं, तो समझते हैं कि सुन लिया। फिर उसके बाद और एक लिस्ट आ जाती है कि ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। फिर एक काम होता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, और मतलब बिहारी जी को कोई बुद्धि नहीं है और वो जानते भी नहीं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सब अपनी तरफ से हम बताते हैं और समय भी दे देते हैं उनको, और ये सब होता कितने में है भाई, कि 5 रुपए के फूल में और 5 रुपए के पेड़े में। तो बिहारी जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस काम के लिए आपका करोड़ों खर्च होकर घूस में लगना है और वो यहां 10 रुपए में हो रहा है। महाराज जी कहते हैं ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा है, भगवान को बेवकूफ बनाने हम चल देते हैं, तो ये कैसी आराधना है। एकदम महाराज तो बेलाग लपेट बोलते हैं, तो उनकी बात हम आपको सुना देते हैं, ये सब कोई जल्दी सुनाता नहीं है। आजकल महाराज जी कहते हैं कि आजकल तो भाई जरा शिष्य लोगों को संभाल के चलना पड़ता है कि इसको कौन सी बात बुरी लगती है और कौन सी अच्छी लगती है, ये न बिगड़ जाए। तो ये महाराज जी बहुत फक्कड़ों में रहे, गंगा के तट पे रहे, तो इतने फक्कड़ महात्माओं का दर्शन किया कि कोई महात्मा पत्थर मारता था, ऐसे महात्मा का सत्संग किया कि जब आ रहा है कोई देख रहा है कि वो सत्संग के लिए आ रहा है तो पत्थर मारे वो महात्मा, गालियां दें और इतनी बुरी बुरी गालियां दें कि सामान्य व्यक्ति उसको सह न सके, और महाराष्ट्र उनके पास भी जाए बैठे, तो एक बार दो बार पांच बार दस बार हुआ और वो गालियां बंद न हो, स्वागत गालियों से ही हो। तो महाराज जी ने एक बार हाथ जोड़ के पूछा कि ये महाराज जी आप गालियां क्यों देते हैं, तो कहे कि देख तू मेरी गाली सह लेगा तो संसार की गाली तेरे को बुरी नहीं लगेगी, मैं तेरे को पक्का कर रहा हूं। और उसका उदाहरण भी मिला, यही बंबई की घटना है या कहीं की, हमको याद नहीं है, स्मरण ठीक नहीं है, कोई यज्ञ था बड़ा और उसमें बहुत महाराज जी उस समय भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे महाराज जी, और बहुत बड़ी सभा जुटी थी, 10 या 20 हजार लोगों की भीड़ थी, और उसमें जिन लोगों ने चंदा दिया था उसकी सूची पढ़ी जा रही थी। तो जो सूची बनती, अब तो जानते हैं जैसे हमको सूची दी गई यहां ट्रस्ट से, गिरीश भाई ने दी, यदि मैं पढ़ दूं ये तो सब नाराज हो जाएंगे कि कुछ है नहीं, एक भी नाम जिस सूची के यहां पे उपस्थित नहीं है, बहुत आश्चर्य है। तो वही कह रहे हैं ये ईश्वर का नर्तन है, ये ईश्वर का संचालन है जो वो कर रहे हैं, इसमें हम कैसे संचालन कर सकते हैं। तो अब वो सूची पढ़ रहे थे महाराष्ट्री, पढ़ते 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 जब पूरी हो गई तो रख दिया और कह दिया कि हो गई। तो एक महात्मा खड़े हो गए, क्या कि आपने हमारा नाम जानबूझ के नहीं लिया, जबकि उस सूची में था नहीं, महाराष्ट्री की गलती नहीं थी। पर महाराष्ट्री ने कहा कि मैं भाई गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। तो कह नहीं ऐसे नहीं, तुमने हमारा नाम जानबूझ के नहीं लिया है कि हमने चंदा दिया और हमारा नाम न आवे लोगों के प्रति, हमारी जो श्रद्धा है वो न उपजे, इसलिए आपने नहीं लिया नाम। तो महाराष्ट्री का गलती हो गई, भाई आप जो बोलो वो हम कर लें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे गलती मानने से नहीं, और सबके सामने ये बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़े हो और कान पकड़ो और उठा बैठक करो यहां पे मंच पे। तो महाराज जी कर किया, तुरंत किया, उसमें ये नहीं। अच्छा, अब लोग महाराष्ट्री को जितना चाहते थे वो तो नाराज हो गए सारे के सारे उस महात्मा पे और मारने के लिए तैयार। महाराज जी ने हाथ जोड़ के उन लोगों से भी प्रार्थना की कि नहीं भाई, ये तो हमारे मित्र हैं और हम लोगों का ये हंसी मजाक चलता रहता है, तो आप लोग इसको ऐसा, तो उनको भी, उनकी भी रक्षा और उस भाव की भी रक्षा, और अपना कुछ नहीं, अपने शरीर में कुछ नहीं कि मान है कि अपमान है, वो ऐसे वहां पे कान पकड़ के उठा बैठक की उन्होंने। तो ये हमारे जीवन में इतनी नम्रता, और हमारे जीवन में होता क्या है कि हम किसी से एक बात बर्दाश्त नहीं होती है। कर्मचारी है, हमको ठीक से मालूम है कि वो कर्मचारी है, तो यदि हम उसके मालिक बनने जा रहे हैं तो हमको अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए महाराष्ट्री से ही सीखना चाहिए। महाराष्ट्री ने कभी किसी को डांट के नहीं बोला, और महाराष्ट्री ने जिस ढंग से, वो हाथ पैर हैं हमारे, तो जैसे हम कहीं नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं, नौकर को भेज देते हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते तो उस नौकर से कराते हैं, तो वो हमारे हाथ पांव हैं। तो जैसे हम अपने हाथ पांव को मारते नहीं हैं, बुरा नहीं कहते हैं, वैसे हम अपने नौकरों को, सेवकों को कैसे कह सकते हैं। तो सेवकों से जब हम कड़ा बोलते हैं तो उनके मन में, आप कितने भी बड़े हों लेकिन उनके प्रति में, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा कभी नहीं जगेगी, वो आपका काम भरले कर देंगे, पर जिस भाव से करना चाहिए वो भाव नहीं आएगा। तो अच्छा, उस भाव की अगर उत्पत्ति हो गई तो वो फिर बिना बोले भी आपका काम करेंगे। ये महाराष्ट्र से हम लोगों को सीखने के लिए है ये बातें, कि हमको अपने सेवकों को कितने प्रेम से रखना है। महाराष्ट्र कहते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां के सेवकों को देख के ये अंदाज कर लेते हैं, ये अनुमान लगा लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, सेठ जी का स्वभाव कैसा है। वो अपने नौकरों को, अपने सेवकों को गंदा रखते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है। उनके सेवक प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब कि उनके जीवन में कहीं न कहीं प्रसन्नता नहीं है। तो जैसे भगवान का सेवक देखो, हम और क्या बोले, महर्षि बैठे हैं, ये तो अपनी वाणी आपके सम्मुख बोल के हमको कितना बड़ा सौभाग्य मिला। गिरीश भाई कह रहे थे ये तो बड़ा मामला खराब है जी, खतरनाक है। ठीक है, इनका प्रेम है जो ऐसे बोलते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं। ये महाराष्ट्र का जो जीवन है, एक एक घटना से हमको सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन कैसे उत्कर्ष को प्राप्त हो। हम एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते और हम भगवान को खुश करने की बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है। हम एक पति को या एक पत्नी को खुश नहीं रख सकते और हम भगवान को खुश करने की बात करते हैं, हो ही नहीं सकता। पहले अपनी प्रसन्नता बढ़े, अपने आसपास के लोगों की हमको देख के प्रसन्नता हो, फिर हम भगवान की या गुरु की प्रसन्नता की बात सोच सकते हैं। तो हमारा जीवन जितना हमारे हाथ में है उसको हम प्रसन्न करें, उसको हम आनंदित करें। हम किसी से वाद विवाद न करें, हम किसी को ठेस न पहुंचाएं, दूसरा ठेस पहुंचाता हो तो हम उसको पचा लें। ये शिव से सीखना है। जहर पीने को मिल रहा है और वो जहर पी रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम जहर कैसे पिए, हम विष कैसे पिए। तो विष पिएंगे तो हृदय में जो भगवान है उनको तकलीफ होगी, और यदि हम न पिए तो इस सारे के सारे संसार को कष्ट होगा। तो उसको उठा के गले में रख लिया, नीलकंठ हो गए। तो ये जो विधा है, ये जो विद्या है, वो हमको शिव से मिल रही है। तो कोई बुरी बात मिलती है तो उसको हम चुपचाप धारण कर लें, न किसी से बोले न उसका प्रत्युत्तर करें। ये महाराज जी की जो जीवन में है ये साक्षात दिखता है। महाराज जी के जीवन की घटना है, यहां मुंबई में एक महात्मा थे, वो महाराज जी की सेवा में आए कुछ दिनों के लिए, और उनके महाराज जी उनके विषय में बताते हैं कि उनको किसी न किसी से झगड़ा करने की आदत थी। जब तक किसी को 10 बात सुना न लें और उससे झगड़ा न कर लें तब तक वो चैन से नहीं रह सकते थे। एक दिन हुआ क्या कि सब लोग अजंता एलोरा है कुछ यहां आसपास, तो वहां सब लोग चले गए, महाराष्ट्र के पास कोई नहीं था, वही थे। अब वो उनसे पूछा गया कि आप भी चलोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी के, मैं अकेले रह सकता हूं, आप सब लोग जा सकते हो, भोजन हो गया है, तुम लोग शाम तक लौट आओगे, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम भजन करेंगे, तुम सब लोग जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं जाना है, हम महाराज जी के पास रहेंगे। जब सब लोग चले गए तब वो महाराज जी के पास आए कि देखा उन लोगों को, हमको नहीं ले गए। अब इस बात को लेकर, और आपने भी कहा क्यों नहीं कि इनको जाना चाहिए, आपने क्यों नहीं हमारी वकालत की, महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, तुम उनसे झगड़ लेना, तुम्हारे झगड़े का कोटा पूरा हो जाएगा, हम भजन के लिए यहां रुके हैं, हमको भजन करने दो। तो ये जो स्वभाव है हमारा, अच्छा आप अपनी वृत्ति को, महाराज जी का जो शीशा है वो हम आपको आपके सामने रखते हैं, आपको देखना हो कि न देखना हो, महाराज जी यहां पर ही बोल के गए कि बंबई वालों के सामने मैं अपनी सारी बातें रख देता हूं पर मैं सुधारने का ठेका नहीं ले रहा हूं कि सब मैं आपको सुधार के जाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं बात रखता हूं, आपको काम आवे तो रखना, नहीं आवे तो न रखना, हमको इसका दुख नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि आप अपनी वृत्ति को देखते रहो, हमारी वृत्ति कैसी है। आज मोदी ने नोट बदल दिया, बहुत बुरा किया, ट्रेन लेट आई, बहुत बुरा हुआ, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत ये सारा हमको बुराई देखने का ठेका मिला है क्या, सारे संसार का, ये खराब है, ये खराब है, आज समय से सत्संग शुरू नहीं हुआ, आज जिनको अध्यक्ष बनना था वो नहीं आए, उनकी तबीयत खराब, हे भगवान, सारा का सारा खराबी की लिस्ट बना के बैठे हुए हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ठेकेदारी हम क्यों कर रहे हैं भाई, अपना जीवन हम क्यों नहीं देखते कि हमारे जीवन में क्या क्या खराबी रह गई है, उस पर दृष्टिपात क्यों नहीं करते, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारे में लोभ की वृत्ति है उसको हम क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। तो ये जो सत्संग का प्रभाव है या जो सत्संग की वाणी है ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए है, इस बात को हम कब समझेंगे। महाराज जी इस आनंद वचनामृत में, आनंद कथामृत में इस बात को बोलते हैं। ये आनंद कथामृत आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 18 दिन का प्रवचन है महाराज जी का, और भिन्न भिन्न विषय पे एक दृष्टिपात है, हमारे जीवन के लिए ही है ये, और इसमें भगवान की छोटी छोटी लीलाओं को उदाहरण के रूप में रख के महाराज श्री ने भक्ति का उदाहरण दिया है कि भक्ति कैसे कैसे होती है और भगवान से भाव कैसे कैसे बनते हैं। उसमें बता रहे हैं कि एक गोपी, गगरी बोलते हैं क्या आप, जो मिट्टी के होते हैं, गागर, गागर, तो एक गागर, गागर के ऊपर दूसरी गागर, गागर के ऊपर तीसरी गागर, ऐसे करके 3-4 गागरें रख के और पकड़ी हुई, और 2 गागर और अगल बगल भी ऐसे, तो लेके और आ रही है यमुना जी का जल भर के, तो यमुना जी का जल भर के आ रही है, तो करील के कांटे होते हैं वृंदावन में, आप लोग गए होंगे परिक्रमा में गोवर्धन की, तो करील के छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और उनके कांटे होते हैं और झाड़ियां जरा तितर बितर होती हैं, तो उसमें उसकी चूनर या जो साड़ी थी वो फंस गई पीछे से। अब वो आगे न बढ़ पावे, अगर जाएगी तो वस्त्र फट जाएंगे। तब तक ये नटखट हमारे नंद किशोर, कृष्ण कान्हा, मुरलीधर, चित चोर, माखन चोर, जितने चोर हैं सारे चोर सब लगा दो, दिल, ये दिल को चुराने वाले, मंद मंद मुस्काने वाले, ठुमकते ठुमकते जैसे कोई बच्चा मस्ती से चलता आ रहा हो, कैसे इधर उधर पैर फेंकता हुआ, कभी एक पैर इधर कभी एक पैर उधर, आगे सामने क्या क्या रे, तो कहे कि मेरी चूनर फंस गई है, छुड़ाएगा क्या। तो अब उसे तो छुड़ाऊंगा तो तू देगी क्या, तो कहे मेरा हाथ फंसा हुआ है, मेरे सिर पे इतने बोझ है, तेरे को लेने की पड़ी है, तो कहे लूंगा नहीं तो छुड़ाऊंगा नहीं। तो कहे भाई कुछ अभी तो नहीं है, बाद में आके शाम को ले जाना। क्या ले जाना, मक्खन ले जाना, ठीक है सौदा तय हो गया। अब उन्होंने छुड़ा दिया, फिर भी वो वहीं खड़ी थी। तब तक पीछे से और गोपियां आ गई, उन्होंने कहा क्या खड़ी है बावरी जैसे यहां पे, तो कही कि ऐसी ऐसी घटना घटी, तो कही ठीक है घटी तो घटी, अब तो चल। तो कह रहे उसने वस्त्र तो छुड़ाया पर मन उलझा दिया, जो हमारा उलझा हुआ वस्त्र था वो तो छुड़ाया पर मन ऐसा हमारा उलझ गया कि अब यहां से हिल ही नहीं सकते। तो ऐसे कृष्ण की लीला का महाराज जी ने इसमें बहुत ही रसीला वर्णन किया है। क्या कि बिहारी जी के पास आप जाते हो? तो यहां जाते हैं तो क्या एक पर्दा पड़ता है वहां पे और खींचते हैं, तो क्या क्यों पर होता है ये? तो क्या ये जो छलिया है, ये जो रसिया है, ये चित्त को ऐसा खींचता है कि सास और बहू आई ना, तो सास को तो छोड़ा और बहू को पकड़ लिया, आंख से आंख लड़ गई। अब नई नई बहू और उससे रूप देखा तो भगवान को ऐसी लट्टू हुई कि वो वहीं की वहीं उसका पूरा हो गया शरीर। अब वो सास आई तो बड़ा उलाहना कि तू सुधरेगा नहीं, तू सुधरेगा नहीं। और फिर हमारे पुजारी जी पंडित जी लोग फिर उसमें पर्दा डालने का काम शुरू किए कि न जाने कितनों को यहां पे ऐसा ऐसा करेगा, किसको किसको फंसाएगा। तो इस ढंग से ये बिहारी जी को वहां पे ये हुआ। बिहारी जी पर पहरा लगाया गया रात में कि भाई यहां पे सामने एक सेवक लगा दो कि रात में कुछ आए ना, कुत्ते उत्ते ना घुस जाए मंदिर में। पहले पट नहीं हुआ करते मंदिरों में, तो देखा कि रात में निकल के जा रहे हैं और रुंझुन रुंझुन उनके पायल बज रहे हैं। तो पूछा कहां, उस पहरेदार ने पूछा कहां, तो कहे भाई शाखा है, विशाखा है, ललिता है, सारी सखियां हमारा निधि कुंज सेवा कुंज में इंतजार कर रही हैं, रास के लिए जा रहे हैं। तो कहे रास के लिए जा रहे हैं, हम भी चले? तो कहे चलो। तो भाई वो भी गए साथ साथ। गए तो लौटने में भोर हुई, चार बजा पांच बजा, तो वो भी सोए और ये भी सोया। अब वो सवेरे सवेरे पुजारी जी ब्रह्म मुहूर्त में आ गए, साढ़े तीन बजे लगभग, वो चार बजे लौटे और उसी समय पुजारी जी आ गए कि अमंगला होगी। कहे अरे भाई अभी अभी तो ये लौटे हैं महाराज, और जगाओगे तुम, ये क्या अनर्थ करते हो, इनको सोने दो। तब से बिहारी जी की आरती आठ बजे होने लगी। मंगला का एक दिन होती है, वो भी जन्माष्टमी के दिन, उस बीच में कभी अब मंगला का प्रसंग ही नहीं, आठ बजे के तक सोते रहते हैं महाराज। तो इस ढंग से छोटी छोटी लीलाएं महाराज जी ने इसमें उद्धृत की हैं, भक्तों की और भगवान की। तो यही और भक्त और भगवान का जो भाव है, इसी के बीच को जो बंधन है, इसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति के आचार्यों ने बहुत मीठे मीठे उदाहरण दिए हैं और लगभग लगभग इसमें 18 भाव अन्य अन्य आचार्यों के हैं कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति किसको कहते हैं, भागो भक्ति, जो हमको संसार और भगवान का भेद बता दे उसको भक्ति कहते हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति को मीठा बना दे उसको भक्ति कहते हैं। महर्षि ने सभी आचार्यों का नाम लेते हुए आदर से इस ग्रंथ में उनका उद्धरण दिया है और हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो कर्म है, जो ध्यान है, जो ज्ञान है, जो उपासना है, उसके बारे में भी बताया है। मैं समय 9:30 तक का है ना, और हमको लगता है कि हमने पूरा खींच ही दिया। महर्षि अपराध हो तो क्षमा करेंगे। तो हम यहां पे अच्छा, ज्ञान के गुरु कौन है भाई? कृष्ण है ना, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है वो कृष्ण को दिया है ना, और गीता हमारे लिए सारे के सारे सन्यास का जितना वर्णन गीता में है, कई अध्याय सन्यास योगुन नाम उच्यते, और कर्म का विभाग है उसमें, ध्यान का विभाग, भक्ति का है, कर्मयोग है। तो इस ढंग से गीता में ज्ञान है, और गीता का ज्ञान दे कौन रहा है? यही छोरा, यही छोरा आपका गोपी वाला, गोपियों को, गोपियों के जो प्रेम पे नाचता है, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उसको गोपियों ने नचा नचा के मार दिया वहां पे। हाँ, श्री रामा ने कहा कि मैं अपने दान लूंगा, उनको घोड़ा बढ़ा के उसके ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे कई सखा हैं, कई भाव हैं इस पुस्तक में, वो हैं कि कई ढंग के सखा हैं। एक तो जैसे जरा बड़े सखा हैं, वो बोलते हैं कृष्ण को ये करो ये मत करो, ऐसे रहो ऐसे मत रहो, ऊपर मत चढ़ना गिर जाएगा, ऐसे ऐसे वाले भी सखा हैं। कई लोग एकदम साहचर्य साथ साथ का भाव मानते हैं, दोस्त गलबहिया कि चल ऐसे करते हैं, चल वैसे करते हैं, ये कृष्ण का साथ भाव। और कई लोग नर्म सखा हैं, जो आनंद देने के लिए कृष्ण को हंसा दें हम भगवान को, ऐसा उछल कूद करते हैं, वो कभी नाटक करते हैं, कभी खेल करते हैं, कभी जोकर बनते हैं कि हमारे कृष्ण खुश रहें। तो इस ढंग से अलग अलग भाव, चार ढंग के सखा सखाओं का वर्णन इसमें महाराष्ट्र ने किया है कि हमारे सखा किस किस ढंग के होते हैं। हमारे जो सुदर्शन सिंह चक्र हैं, जो 6 दिन 7 दिन इस पे हमने कहा, उसमें उनकी बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा करी थी। तो इस ढंग से भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध होना चाहिए जीवन में, वो पिता के रूप में हो, वो भाई के रूप में हो, वो सखा के रूप में हो, वो ईश्वर के रूप में हो, किसी भी रूप में ईश्वर का प्राकट्य, ईश्वर का संबंध हमारे मन से हो। और मनुष्य का अर्थ ही ये है कि वो मन से सीता है संबंध, पति पत्नी है। चारों बहन अगर बगल में बैठी हो हमारे गिरीश भाई के, तो जब तक हमको बताया नहीं जाएगा तब तक हमको नहीं मालूम होगा कि ये बगल में कौन बैठी है। लेकिन चारू बहन या गिरीश भाई को बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये पति पत्नी है, इन्होंने उस संबंध को मन से सी लिया है। 30 साल पहले 40 साल पहले 50 साल पहले चारू बहन को अगर ये देखे होते तो मालूम नहीं थी कौन ये लड़की है। क्यों 50 साल पहले? अच्छा, ये भी नहीं बताएंगे। चलो ठीक है। तो ये जो संबंध है, ये मनुष्य जीवन में हम मन से सीते हैं। ये बेटी है, ये बेटा है, कोई दूर से नहीं बता सकता ये कौन किस भाव में बैठे हैं, लेकिन हमारे मन में वो संबंध है। तो मनुष्य का अर्थ ही ये है कि मन से संबंध सी ले। तो हमारा जो संबंध ईश्वर से है वो हमको मन से ही सीना है। ये ज्ञान का जो संबंध है, ये एक महर्षि इसके बारे में बताएंगे कि हम ज्ञान को किस चित्त में और या चित्त का लोप करके किस भाव में ले आके, या बेभाव के, अभाव के, किसका अभाव होता है, किसका भाव बनता है और किसका भाव ध्वंस होता है, ये सब यहां पे विधाएं हैं और उनमें हम प्रवेश करते हैं। महाराज जी की बातें बहुत सुनानी थी, पर बहुत अगर अवसर मिलेगा और आज आशीर्वाद मिला है तिजुरीवाला जी का कि आप इसको कंटिन्यू रखना, और 2-4 लोगों ने भी आके कहा है कि आप इसको कंटिन्यू रखना, तो महाराष्ट्र का आशीर्वाद आप लोगों के रूप में हमको प्राप्त हो और हमारी वाणी महाराष्ट्र की सेवा में लगी रहे और ये जीवन उनके सेवा में जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। नारायण 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 महाराष्ट्र की प्राप्त
हो। शनो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणम्।
द्रौपद परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य महाराज श्री, आज जिनका ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जो आराधन महोत्सव इसका नाम दिया है, दूसरा नाम है आनंद महोत्सव, तीसरा नाम है निर्वाण महोत्सव, त्रिवेणी संगम है और इसके कर्णधार प्रेमपुरी आश्रम और हमारे परम प्रिय परम सम्माननीय सोमदत्त जी। कल तो अकस्मात ही मेरे पास फोन आया गिरीश भाई का, कहा कि स्वामी जी कल आपको पधारना है और जगदीशपुरी जी की कुछ तबियत में गड़बड़ी है। हमने कहा भाई मैं तो हमेशा ही प्रेमपुरी का निमंत्रण आया तो मैं तो कभी भी, जब तक हमारा तो निश्चय है कि जब तक हमारा शरीर चले और स्वास्थ्य चले तब तक प्रेमपुरी की सेवा से हम कभी भी विरत नहीं होंगे। कहानी का तात्पर्य है कि हमने कहा भाई क्या कारण है, उसके बाद ये पता चला कि आराधन महोत्सव यहां चल रहा है और उस निमित्त से ही आपको यहां सुबह सुबह ही 7:30 बजे तक पहुंचना है। उसके बाद शाम को चिमन भाई का भी फोन आया। चिमन भाई ने कहा कि स्वामी जी आप तैयारी करके आ जाना। हमने कहा क्या मतलब? कहा कि दवा विवाह भूलना नहीं। हमने कहा कहावत है बिच्छू का विरहर तो अपने पीठ पर ही होता है, हम तो हमेशा ही तत्पर ही रहते हैं, परमार्थ में असावधानी नहीं होना चाहिए, परमार्थ में तो हमेशा ही सावधान होना चाहिए। सावधान जो होता है उसी का नाम साधक होता है। जिसके जीवन में सावधानी नहीं है वो साधक कभी बन नहीं सकता है। और हमारे गुरुजी ने शुरुआत में हमें कहा था कि बेटा सिद्ध कभी बनना नहीं और साधकपना कभी छोड़ना नहीं। जो जीवन भर साधक रहता है तो वही तो कुछ वस्तु को पाता है, तो सिद्ध बनता है ना, वो कुछ पाता नहीं है। पूज्य महाराज श्री के विषय में बहुत कुछ हमारे प्रिय सोमदत्त जी ने आपको जानकारी दी। महाराज श्री तो वास्तविक संत तुकाराम का एक वाक्य मुझे स्मरण आया, अमी वैकुंठवासी आलो याची कारणासी बोली ले जे ऋषि साच भावे वर्ताया। ये तो वैकुंठ में ही रहने वाले ईश्वर स्वरूप ही है, जो वैकुंठ में रहता है ना। वैकुंठ की परिभाषा है, आप लोग कल्पना करते हैं कि कोई अंतरिक्ष में कोई वैकुंठ नाम का लोक होगा, वो तो बात नहीं है, हमने कई बार बता चुके हैं। वैकुंठ देश का नाम होता है निरीक्ष अंतकरण, क्या जहां काम नहीं है, जैसा भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये जो स्थित प्रज्ञ स्थिति है अंतकरण में, देखो काम भी तीन प्रकार का है, एक इच्छा रूप काम है, एक वासना रूप काम है और एक संस्कार रूप काम है। काम की परिभाषा करने जाएंगे तो बहुत गहराई है और आप लोग जानते ही हमारा तो क्या करें, मैं मजबूर होता हूं, बाहर की कथाएं मेरे को नहीं आती, संसार की कथा करना ही मेरे को आती नहीं है, तो उसमें मुझे कुछ तथ्य नहीं लगता है। तो जिसमें तथ्य नहीं लगता है वही आप लोग को बताए तो वो तो आप लोग जानते ही है। कहने का तात्पर्य, काम बहुत गहरी चीज है और जिसने अपने जीवन में से जो गहराई में बैठा हुआ काम, जो संस्कार रूप काम है, अब प्रश्न ये होता है कि संस्कार रूप काम के पीछे भी क्या कोई काम है। सो काम ये तो श्रुति ने भी कहा कि उसने कामना की, अब वो ईश्वर की कामना कौन सी है? जीव की कामना अलग है, ईश्वर की कामना अलग है। ईश्वर की कामना क्या है? वैकुंठ किस देश का नाम कहा जाता है? जहां ईश्वर का भी काम समाप्त होता है ना, उस देश का नाम होता है वैकुंठ, समझिए ना। और उसी स्थिति को जो जीव प्राप्त करता है उसको वैकुंठवासी कहा जाता है। ईश्वर की काम और जीव का काम, जीव में तो काम जो आता है वो आता है अविद्या के गुणों से। क्या ध्यान रखना थोड़ा, देखो मेरा प्रवचन तो आप लोग जानते ही है, जो असावधानी होगी ना उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा और वो कहेंगे कि बाबा जी ने बताया तो बहुत अच्छा परंतु समझ में कुछ नहीं आया। देखो ईश्वर का काम और जीव का काम, जीव का काम जो निर्माण होता है तुला विद्या से निर्माण होता है, ध्यान रखो, और ईश्वर का काम जो निर्माण होता है वो मूला विद्या से निर्माण होता है। क्या एको हम बहुश्याम प्रजाई, ये जो श्रुति कहती है, एको हम, ये अहम का बोध कराने वाली, ये अहम का बोध हुआ तभी तो ब्रह्म तत्व ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ है। क्या देखो, ईश्वर यदि काम वाला नहीं होता तो ईश्वर में काम निर्माण नहीं हो सकता था। क्या ईश्वर जो निर्माण होता है वो भी काम से ही निर्माण होता है। अब वो काम कौन सा है उसी को ही शास्त्र ने, वेदांत शास्त्र ने मूला विद्या कहा है। मूला विद्या का नाम ही ब्रह्म विद्या है। क्या मूला विद्या का नाम ही वास्तविक ब्रह्म विद्या है, जिसको अद्वैत सिद्धिकार लेशा विद्या कहा जाता है। ये बाधक नहीं है, इसलिए ईश्वर की माया ईश्वर को बाधक नहीं है, परंतु जीव की अविद्या जीव को बाधक है। ईश्वर ने जब काम किया, कामना की, तो ईश्वर के काम से ईश्वर के ही तीन रूप बन गए। क्या ईश्वर, ईश्वर ही त्रिरूपधारी बन गया, जिसको हम पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और इन्हीं से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। बहुश्याम प्रजाये, जो प्रजा, देखो इस संकल्प में तीन वस्तु है, क्या क्या तीन वस्तु है? संकल्प है, संकल्प के पूर्व में ज्ञान है, और संकल्प के बाद कर्म है, बीच में संकल्प है, संकल्प क्या है? बहुश्याम। कर्म क्या है? प्रजाए। ज्ञान क्या है? अहम। ये तीन वस्तु है। जो इसमें जो अहम है, अहम, ये अहम को ही ईश्वर कहा गया है। एको हम, ये जिसको बोध हुआ है उस बोधवान का ही नाम है ईश्वर। जब अपना बोध होता है तब ही आप संकल्प कर सकते। अपना ही बोध नहीं है तो संकल्प होगा क्या? सुषुप्ति में आपको अपना बोध नहीं होता है तो कोई संकल्प हो सकता है? नहीं। जब जग जाते हैं, सुषुप्ति से बाहर आ जाते हैं, तब पहले, सबसे पहले आपको अपना ज्ञान होता है, और अपना ज्ञान होने के बाद फिर संकल्प स्फुरित होता है, और संकल्प से फिर कर्म निकलता है, क्रिया निकलती है, वो आगे की प्रक्रिया है। देखो, ये जो इसमें जो संकल्प की समाप्ति जहां होती है, समझ लें ना, संकल्प की समाप्ति कब होगी? कर्म समाप्त होने से संकल्प की समाप्ति नहीं होती है। और आराधना का मतलब क्या होता है? आराधना का जो आसमंतात राधयति इति आराधना, समझे ना, अर्थात पूर्ण रूप से संकल्प का निवृत्ति हो, समाप्ति हो, या देखो संकल्प की समाप्ति कब होती है? संकल्प मिटाने से संकल्प की समाप्ति नहीं होती, ध्यान रखो। संत तुकाराम ने कहा है, संकोचो निकारे झाला शिलान घी अपोषण ब्रह्मांडाची। संकल्प की समाप्ति करना है तो संकल्प को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि सब उसके अंदर समा जाए। ये जो संकल्प को व्यापक बनाने की, महान बनाने की, ब्रह्म स्वरूप बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी का नाम है आराधना। क्या? इसी के अंदर सभी की समाप्ति होती है, सभी का अंतर्भाव होता है। इससे बाहर कोई भी वस्तु नहीं होती है। ईश्वर का संकल्प संकीर्ण नहीं है, छोटा नहीं है। ईश्वर का संकल्प महान है, इसलिए ईश्वर को महान कहा जाता है। और जीव का संकल्प बहुत संकीर्ण है, बहुत अल्प है। क्या? ईश्वर को महान और जीव को अल्प क्यों कहा गया है? ये जीव अपने संकल्प से ही क्या बन गया है? छोटा बन गया है। और अब तो हम इतने देखो, वास्तविक स्वार्थ शब्द बहुत उत्तम है, परंतु लोगों ने इसका गलत अर्थ समझ लिया, गलत अर्थ चल पड़ा है। जीव को मैं स्वार्थी नहीं कह सकता हूं। संकीर्ण कह सकता हूं। जीव इतना संकीर्ण बनता जा रहा, इतना संकीर्ण बनता जा रहा, जितना संकीर्ण बनता जाएगा उतना ही वो दुखी होता जाएगा। ईश्वर सुखी और जीव दुखी, इसका कारण क्या है? हमारा संकल्प ही हमें सुख रूप बना सकता है, संकल्प ही हमें दुख रूप बना सकता है। जिसने अपने संकल्प को संकीर्ण बनाया है वो दुखी है, और जिसने अपने संकल्प को महान बनाया है वो सुखी है।
ईश्वर ने अपने संकल्प को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा है, ईश्वर ने अपने संकल्प को सर्वत्र व्यापक बनाया है। इसलिए तो श्रुतियों ने कहा कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने निर्माण भी किया और उसमें उसके अंदर प्रविष्ट भी हुआ। ईश्वर को खोजने के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सोमदत्त जी ने कहा कि मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य कौन है वास्तविक? प्रश्न ये होता है, किस मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध करना है? और ये संबंध करने वाली जो कड़ी है उसे कोई आराधना कहा जाता है। ये हमारा शरीर मनुष्य नहीं है, हमारा मन मनुष्य है। संस्कार जन्य जो मन है, इस संस्कार जन्य मन से ही हमने इस शरीर को मनुष्य माना है, स्त्री माना है, जीव माना है, सुखी दुखी माना है, कर्ता भोक्ता माना है, क्या क्या माना है। ये जितनी भी प्रक्रिया है मन के कारण ही तो मनुष्य कहा है। तो आप कहेंगे तो मन तो पशुओं में भी होता है, परंतु उनके मन में और मनुष्य के मन में थोड़ा अंतर है। क्या? जीव का मन जो है पंचकोशों से विकसित है, यहां पांचों कोष विकसित है, और अन्य प्राणियों में कहीं चार कोष विकसित है, कहीं तीन कोष है, कहीं दो कोष है, और कहीं केवल एक कोष मात्र ही है। मन तो वहां भी है परंतु विकसित नहीं, अविकसित है। इसलिए आप मनुष्यों में भी देखते हो कि जिनका मन विकसित नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो पत्थर आदमी है। क्या कहते हैं? या कहते ये तो पशु है, बिल्कुल कुछ भी अक्कल नहीं हो। इसका मतलब क्या? अक्कल नहीं का मतलब बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं का मतलब उसका अंतकरण मन विकसित नहीं है। ये स्पष्ट होता है। इसलिए इन पंचकोशों से विकसित होने के कारण ही यहां इस शरीर में जो मन है वो विकसित होने के कारण ही इस शरीर को उसने मनुष्य बनाया है। या आनंद का भी, आनंदमय कोष का भी यहां विकास है, इसलिए तो मनुष्य हंस सकता है। दूसरे प्राणी हंस सकते हैं क्या? नहीं। आनंद उत्सव कौन मना सकता है? केवल मनुष्य ही मना सकता है। समझे ना? आनंद की प्राप्ति करना, आनंद अपने जीवन में लाना, ये केवल मनुष्य मात्र को ही ईश्वर ने ये कला प्रदान कर दी है या साधना दे दी, जो भी समझो। तो मनुष्य ने क्या करना चाहिए? मनुष्य ने अपने मन का विकास करना चाहिए। मन का पूर्ण विकास बिना संकल्प के नाश से नहीं होता है। क्या? क्योंकि मन को संकीर्ण बनाने वाला, छोटा बनाने वाला हमारा संकल्प है और साथ साथ विकल्प है। संकल्प और विकल्प निर्माण होते हैं, इसलिए इन दोनों के कारण ये मन इतना संकीर्णता में चला है कि एक देह तक, एक नाम तक, एक रूप तक, एक गुण तक, एक धन तक, इतने में ही सीमा उसकी बढ़ जाती है। इसलिए संत ये कहते हैं कि साधना क्या है? साधना कोई दूसरी कोई साधना, मतलब नाक दबाना या योगासन करना या हाथ में माला जप करके लेकर के जपना, ये उपांग मात्र है, ये साधना नहीं है। वास्तविक तो साधना ये है कि आप अपने संकल्प को जितना महान बना सकते हो उतना बनाने का जो पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ में और कर्म में अंतर है, समझ लेना। कर्म पुरुषार्थ नहीं है और पुरुषार्थ कर्म नहीं है। कर्म बाहर होता है और पुरुषार्थ अंदर होता है। कर्म में क्रिया प्रधानता होती है परंतु पुरुषार्थ में ज्ञान प्रधानता होती है। क्या? पुरुषार्थ में ज्ञान की प्रधानता होती है और परमार्थ में साधना में पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, न क्रिया की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ के लिए हाथ पैर तानना जरूरी नहीं है, ना हाथ में माला लेकर के पूर्व के तरफ मुंह लेकर के बैठना जरूरी है। करते हैं तो उत्तम है, साधक वो आपके साधना में वो साधक कर्म है, उसका विरोध नहीं है, परंतु उतना ही करना साधना मानना गलत है। क्योंकि उतना ही करने से आज तक कितने साल से कोई पूजा पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, क्या क्या करता है, परंतु वो बाहर भिखारी में कभी ईश्वर का रूप देख नहीं सकता है। हा? गरीब को देख करके घृणा करता है और बड़े को देख करके सम्मान करता है। इसका मतलब राग द्वेष गया तो साधना की सफलता किसमें है? माला जपने में साधना है, सार्थकता है, या तुम अपने संकल्प को महान बनाने में साधना है? ये मैं इसका विरोधी नहीं हूं, परंतु सपोर्टर भी नहीं हूं। इतने में ही रहना तुम्हारी साधना कुंठित हो जाएगी और तुम संकीर्ण बनकर के अभिमानी बनोगे, और ये हमने देखा है, अनुभव किया है, समझ लेना। कुछ कुछ वेदांती भी ऐसे ही पाखंडी होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, अभी ईश्वर के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ब्रह्म तो हम ही है, मूर्ख है। मैं इनको क्या कहता हूं? मूर्ख कहता हूं, वेदांत समझा नहीं, अपने को ब्रह्म मान रहा है, मूर्ति को क्या मान रहा है? ये संकीर्णता का फल है। इसको साधना नहीं कहा जाता है, ध्यान रखो। मैंने आपको याद होगा, बहुत साल पहले मैंने वेदांत जीवन की साधना पर यहां 8 दिन या 9 दिन प्रवचन किया था, और उसमें साधना के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। साधना कुछ नहीं है, केवल आपने संकल्प को इतना बनाओ, इतना बनाओ, इतना बनाओ। इसी संकल्प की बात तो वेद श्रुति या महावाक्य के द्वारा कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? इसको ज्ञान भी कहते हैं, है ना? क्यों ज्ञान कहते हैं? क्योंकि इस संकल्प में ज्ञान निहित है। आपने को कण कण में हमने अपने को देखने का अभ्यास जो कर लेता है वो ईश्वर रूप माना जाता है, ध्यान रखो। क्या? वो ईश्वर ही है, ईश्वर रूप नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर क्या करता है? सर्वस्य जाम हृदय सन्निविष्ट भगवान क्यों कह रहे हैं? या एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, इसका मतलब है हमारी देह पर दृष्टि, आत्मा पर दृष्टि नहीं है। ये संकल्प व्यापक कब होगा? जब तुम अपने आत्मा को जानोगे और आत्मा में स्थिर हो जाओगे, आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाओगे, तो तुम अपने आप ही तुम व्यापक बनाओगे, तो तुम्हारा संकल्प भी व्यापक होगा। अब व्यापक संकल्प करने वाला जो है वो ईश्वर ही होता है। है ब्रह्मा, परंतु ईश्वर रूप बन जाता है। तो संत इस कोटि में जब पहुंच जाते हैं तब वैकुंठवासी कहा जाता है। ईश्वर का ही वैकुंठ में वास होता है, वो निरिच्छ देश है, निष्काम देश है, इसलिए निष्काम ईश्वर को ही कहा जाता है, आत्मा को ही निष्काम कहा जाता है। तो आत्मस्थित होना यही वैकुंठ की स्थिति है, और इस स्थिति से आत्मस्थ होने पर भी जब देहस्थ बन जाता है, अवतरतीति अवतारः, अवतरति का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे आता है, उसका नाम है अवतार। जो वैकुंठ से अर्थात आत्मलोक से जो देहलोक में आ जाता है या जीवलोक में आ जाता है, क्योंकि आत्मा को जीव तो तभी कहा जाता है जब देह की उपाधि लगती है। देह की उपाधि नहीं लगी तो जीव है क्या? नहीं। अविद्या की उपाधि, अविद्या ही देह है, ध्यान रखो। इसलिए तो कारण देह माना है क्या? नहीं है। कारण देह क्या है? अविद्या ही है। इस अविद्या की उपाधि लग जाती है तभी तो इस उपाधि को लेकर के ही तो आत्मा को या ईश्वर को जीव कहा जाता है। और इस स्थिति में आया, जब ईश्वर जब देह स्थिति में आता है प्रजा के रूप में, अर्थात प्रजा का मतलब ही होता जीव, अब अपने को अभिव्यक्त किया ईश्वर ने, जीव के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया है, तो ऐसी जब अभिव्यक्ति होती है, इस अभिव्यक्ति का नाम ही प्रागट्य कहा जाता है या अवतार कहा जाता है। तो संत प्रकट होते हैं कहते हैं, या अवतार होते हैं, ईश्वर के ही रूप होते हैं। देवते संत निमित्त क्या प्रतिमा, ईश्वर ही संत के रूप में आ जाते हैं। किसलिए आते हैं? इसलिए आते हैं, देखो एक तुकाराम का वाक्य है, अरभ काचे साठी पंते हाथी धरली पाटी, तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी। देखो हमारे परमात्मा का आचरण, ज्ञानाचरण, शास्त्राचरण, धर्माचरण, ये कौन सिखाएगा तुम्हें? ईश्वर सिखाएगा? नहीं, ईश्वर ही जब मनुष्य रूप में आता है, संत रूप में आ जाता है, जैसा एक छोटा सा बालक, उस बालक को ज्ञान प्रदान करना है, उस ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको भी हाथ में स्लेट लेना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं? उसको भी हाथ में स्लेट लेना पड़ता है, हाथ पकड़ करके उसको अ आ या ए बी रेखाएं खींच खींच करके उसको सिखाया जाता है। किस लिए वो कर रहा है? उस बच्चे को सज्ञानी बनाने के लिए, उसको अपना ज्ञान अंदर जो है, उस अंदर के ही ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसा एक मास्टर को, टीचर को यह करना पड़ता है क्रिया, उसी प्रकार से संत भी, तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी, उस ज्ञान का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं, धर्म का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं, भक्त का आचरण करके स्वयं दिखाते हैं कि किस प्रकार से रहना है इस संसार के अंदर, और किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से धर्म करना है, किस प्रकार से उपासना, आराधना, प्रार्थना करना है, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करना है। यदि संत नहीं होते तो तुम्हें किसी को ईश्वर का बोध भी नहीं होता, और ईश्वर का बोध नहीं होता तो क्या तुम अपना ज्ञान कर सकते थे? हा? कर सकते थे? नहीं, फिर तो हमारा जीवन पत्थरमय हो जाता है या पशुमय हो जाता है। अब पूज्य महाराज श्री के विषय में तो कहना ही क्या, हमने सबसे पहले महाराज जी का दर्शन मेरे ख्याल से 74 या 73 में किया था, परमार्थ निकेतन में हम पढ़ते थे ऋषिकेश में। उस समय धर्मानंद जी महाराज थे, वासुदेवानंद जी महाराज थे और सदानंद जी महाराज के पहले नहीं, आसंगानंद जी तो हमारे सुखदेवानंद जी के बाद जो दूसरे मंडलेश्वर थे मैं भूल गया उनका, भजनानंद जी महाराज, हाँ भजनानंद जी महाराज मंडलेश्वर थे, सदानंद जी महाराज तो बाद बने। तब महाराज जी का मैंने परमार्थ निकेतन में पहला दर्शन किया था, उसके बाद वृंदावन में भी एक दो बार किया और बंबई में भी कई बार, पर सत्संग करने का मौका मेरे को कम मिला। हाँ एक दो बार मिला, प्रेम कुटी में महाराज जी का प्रवचन चल रहा था सन्यासी में, तब एक बार दो तीन दिन मैं आया था वहां, मैं भी आनंद निवास में कथा करता था डी रोड पर, और वहां से उसके बाद वहां जाकर के महाराज जी का सुनता था थोड़ा। परंतु वास्तविक महाराज जी का जीवन जो है, तो ईश्वर विभूति जिसको कहते हैं, ऐसा भगवान ने 10वें अध्याय में अनेक प्रकार की अपनी विभूतियां बताई है। विभूति का अर्थ ही होता है विशेष प्रकार से होना। क्या? ईश्वर ही विशेष रूप से बन जाता है। महाराज जी के अंदर हमने ये देखा था, धर्म मूर्ति तो थी ही, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं, और उनकी फक्कड़ाई को भी हमने देखा है, राम सुखदास जी की फकड़ाई और अखंडानंद जी महाराज की फकड़ाई, और एक मस्ताराम बाबा थे। वास्तविक उस समय हमारा इतना बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छे अच्छे संतों के दर्शन हुए और संगति भी हुई, और वही छाप हमारे जीवन पर भी पड़ी है। महाराज जी कर्म मूर्ति भी थे, कर्म का जब प्रतिपादन करते थे तो लगता था कि महाराज जी पक्के कर्मकांडी हैं। क्या? कर्म का जब इतने गहराई से विश्लेषण करते थे तो लगता था कि महाराज जी पक्के कर्मकांडी हैं। जब धर्म का चिंतन करते थे और धर्म का वर्णन करते थे तो लगते थे कि महाराज जी पक्के धार्मिक हैं। ऐसा नहीं, योग की भी महाराज जी ने कई बार कई पुस्तकों में बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है। योग साधना भी महाराज जी की थी, परंतु ये अष्टांग योग साधना कम थी, ज्ञान योग की साधना, ध्यान योग की साधना अधिक मात्रा में थी। महाराज जी के जीवन में जब भक्ति की बात आती थी तो लगते थे कि महाराज जी से परम भक्त कोई नहीं, क्योंकि प्रेम की मूर्ति भक्ति सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, ये जो कहा है परम प्रेम, देखो परम शब्द दिया है प्रेम के साथ, परम प्रेम जिसका नाम है उसी का नाम है भक्ति, और ये परम प्रेम ही भक्ति का रूप है वर का, और अमृत स्वरूपाच उसका स्वरूप है अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? ब्रह्म। भक्ति का स्वरूप है ब्रह्म, और भक्ति ही क्या है? प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम हरि रूप, हरि रूप प्रेम जान। प्रेम में और हरि में कोई अंतर नहीं है। क्या? प्रेम ही, प्रेम को ही विष्णु कहा गया है, प्रेम को ही हरि कहा गया है, प्रेम को ही हर कहा गया है। जो हरण करता है, देखो हरण कौन करने वाला है? प्रेम ही तो चित्त का हरण करता है, प्रेम नहीं हो तो आपका चित्त हरण होगा क्या? हा? किसी के तरफ आप आकर्षित होते हो तो ये आकर्षित करने वाला कौन है? क्या उसका देह है या उसकी कला है? नहीं। आज जिस कला में या जिस देह से प्रेम प्रसरित होता है वो प्रेम ही सभी को कर्षित करता है। इसलिए प्रेम को ही कृष्ण भी कहा गया है, कर्षति इति कृष्ण हरति इति हर। और जो चित्त का भी हरण करे, चित्त हरियले नंदाचनंदनी कहा है भगवान कृष्ण किसका हरण करते? चीर हरण की कथाएं आप लोग सुनते हैं कि नहीं? ये चीर क्या है? ये चीर ही चित्त है, समझ? चित्त को ही चीर कहा गया है, चिरंतन। अर्थात ये जो चिंतन है ना, चिंतन जिससे चिंतन होता है, ये चिंतन ही ईश्वर क्या करता है? अपने तरफ उसके चिंतन को हरण कर लेता है, ईश्वर का चिंतन होने लगता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसा हमारे चित्त को अर्थात संपूर्ण अंतकरण को जब हरण होता है अर्थात परमात्मा में लग जाता है, तब अहम क्या होता है? बदलता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तु नहीं है, समझना। जो अंतकरण चिंतन करने लगता है, देखो संसार आएगा तो चिंता बनेगी और परमात्मा आएगा तो चिंतन बनेगा। चाहे आप किसी वस्तु का करो, किसी रूप का करो, नाम का करो, गुण का करो, वस्तु का करो, पत्थर का करो, वृक्ष का करो, किसी का भी करो, परंतु शर्त इतनी है कि उसमें ईश्वर आना चाहिए तो वो तुम्हारा चिंतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिंतन बन जाएगा। और तुम हाथ में माला लेकर के ईश्वर के सामने बैठे हो और चिंतन कर रहे हो, परंतु उस चिंतन में क्या आ रहा है? दुकान आ रहा है, आज हजार हजार के नोट पड़े हैं, इसका कब इसका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मैं तो जलाना पड़ेगा, हे ईश्वर हमारी पैसा क्या करो, वो आगे का आप लोग जानते हैं। तो आप ये बताओ कि ये क्या बनेगा, चिंता बनी कि चिंतन बन गया? कहने का तात्पर्य है कि जिसने अपने चिंतन को और चित्त को चिंतन बना दिया है वही जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्गत वान यस्य स निर्वाण, अर्थात जिसमें से जिस जीव में से वान चला गया, ये वान ही तो तुम्हें घायल कर रहा है, वान ही तो बाण है। क्या निर्वाण का अर्थ होता है? जिसमें जिसके जीवन में से वान चला गया, देहवान रूपवान गुणवान धर्मवान जातिवान आदि आदि। देखो वान कहा कि महाराज ये सब चला गया, परंतु ज्ञानवान रहता रहेगा तो ज्ञानवान भी रह गया ना, चाहे भक्तिमान रहे चाहे ज्ञानवान रहे, मान भी रहे और मुक्त भी हो जाए, हो नहीं सकता है। मान का मतलब होता है परिच्छिन्नता और वान का मतलब ही होता है दुखी। वान क्या करता है? दुख निर्माण करता है। क्या करता है? सुखी कौन होता है? प्रश्न ये है, हम दुखी क्यों? हमवान को पकड़ रखा है, कोई धनवान बन रहा है, कोई रूपवान बन रहा है, कोई विद्वान बन रहा है, क्या क्या हम बनते जा रहे हैं, है ना। और जितने हम बनते जाएंगे ना उतने ही हम दुखी होते जाएंगे। ध्यान रखो, दुख का मूल बता रहा हूं। इसलिए जिसके जीवन में से वान निकल गया है, हटाओ इसको, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम सुखी तभी हो सकते हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाड़ी हाथ, आपने घर को फूका तो चलो हमारे साथ। यदि तुम सुखी बनना चाहते हो तो सुखी और सुखी लोगों से ईर्ष्या करना बंद करो। हम दुखी है, ये भी कारण है एक दुख का कि ये सुखी क्यों है ना। कोई धन को लेकर सुखी मान रहा है, कोई बिल्डिंग को, फ्लैट को लेकर सुखी मान रहा है, कोई फैक्ट्री को लेकर, कोई गाड़ी को लेकर, और उसको देख करके हम जल रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा, बुद्धिमानी कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा, अज्ञानता। कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ किसके लिए करना है, जो तुम बन रहे हो ना वो छोड़ना चालू करो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, साधना और कुछ नहीं है, समझे ना। जिस दिन तुम्हारे में से बनना बंद हो जाएगा, क्या उस दिन तुम्हारा वान समाप्त हो जाएगा, क्या बनना ही तो बिगड़ना, जो बनता है वही तो बिगड़ता है, जो पेड़ पर चढ़ता है वही तो गिरता है भाई, जो पहला ही जमीन पर बैठा है, डर किसको है। जो हमारे गिरीश भैया कुर्सी से उतर करके नीचे बैठ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। डर कुर्सी वाले को है या नीचे बैठने वाले को है, कुर्सी वाले को थोड़ा सा भी हिल गए तो कहीं घबरा जाता है कि पैर, कुर्सी का पैर तो न टूट जाए, जैसे नेता लोग घबराते हैं। इसलिए निश्चिंत होना है, शांत होना है, तृप्त होना है, पूर्ण होना है, सुखी होना है, आनंदित होना है, तो कुछ बनना बंद करो। बस जिस दिन तुम्हारा बनना बंद हो जाएगा उस दिन वास्तविक तुम उस महान आनंद का प्राप्त करोगे, अनुभव करोगे। और किसका अनुभव करोगे, दूसरे का नहीं। कोई वस्तु ब्रह्म नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ना ईश्वर नाम की कोई चिड़िया है। कल्पना ने तुम्हें जीव बना दिया, इसलिए कल्पना ने ही तो ईश्वर भी बना दिया है, ब्रह्म को ईश्वर बना दिया है और आत्मा को जीव बना दिया तुम्हारी कल्पना से। कोई ईश्वर नाम की चिड़िया नहीं है और ना जीव नाम की कोई कीड़ा है, ये तुम्हारी कल्पना ने ही तुम जीव बन गए हो, तुम्हारी कल्पना से ही तुम ईश्वर को भी निर्माण कर रहे हो। जो कुछ है वो तुम हो, परंतु तुम्हें अपना बोध नहीं है। और ये बोध क्यों नहीं है, इसका कारण है तुम्हारा ये जो बीच में प्रतिबंधक बन रहा है, कुछ होनापन, मैं हूं ये भी समाप्त करो। अहम की भी समाप्ति होती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृतानुभव में ज्ञान का भी खंडन कर दिया है। ज्ञान भी रहेगा तो ज्ञानवान बनता रहेगा, तो ज्ञानवान बनना कोई सुख का साधन नहीं है, समझे ना। उसको भी अज्ञानी से डर है, वो भी भयभीत है, वो निर्भय नहीं है। निर्भय नहीं है तो मुक्त कैसा फिर प्रश्न होता है। और ये बताया हमारा सोमदत्त जी ने कि उड़िया महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और शायद मेरे को पूछते तो मेरे मन में पहले ही आया था ये कि जीवन मुक्ति पहले या विधि मुक्ति पहले। अरे ये पहले और बाद की बात ही नहीं है क्या, तुम अपने को बद्ध मान रहे इसलिए मुक्ति को बना कल्पना कर रहे हो मुक्ति की। मुक्त होता परी बड़े झाला बद्ध घेओनिया छंद माझे माझे, संत तुकाराम ने स्पष्ट कर दिया है। देखो इन वाक्यों को संत महाराष्ट्र के जो संत इतने उच्च कोटि के, और हमने बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में घर में इन संतों के वाक्यों का जो अध्ययन किया और हमारे अंतकरण में इतना बैठा हुआ है कि उसको हम चाहे तो निकाल नहीं सकते। अरे हम हमेशा मुक्त ही है भाई, तो मुक्ति का प्रश्न ही कहां होता है। बस इसमें बाधक केवल एक ही है, उसको निकालने का प्रयास करो, यही हमारी आकांक्षा है। और महाराज जी के जीवन में महाराज मैंने देखा है, अनुभव किया महाराज जी का। वो देखो एक तो भगत लोग जो श्रद्धा से अनुभव करते वो दूसरी बात है, और एक संत ही जानती संताची महिमा, समझे ना। हम लोग जो महाराज जी को देखते थे हम संत रूप से अनुभव करते थे। एक संतों का मिलन जो होता है ना वो दूसरे रूप से होता है, भक्त का भगवान का जो मिलन होता है दूसरे रूप से होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी के अंदर जैसी भगवान कृष्ण को कंस के जब सभागार में वहां गए तो सब अलग अलग रूप से ही भगवान कृष्ण का अनुभव कर रहे थे, गोपिया सखा फिर जो शत्रु थे जो पहलवान थे आदि आदि सब अपने अपने ही रूप से भगवान कृष्ण को देख रहे थे। तो भगवान सर्व रूप में है, हर भगवान किसी भी रूप में, किसी भी रूप में नहीं। इसी प्रकार से संत को भी हम कई प्रकार से देख सकते हैं, कई प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। महाराज जी ज्ञानी भी थे, महाराज जी योगी भी थे, महाराज जी भक्त भी थे, महाराज जी धार्मिक धर्म मूर्ति भी थे, और महाराज जी कर्मकांडी भी थे, और महाराज जी कुछ भी नहीं थे, ये भी मैं बताता हूं। एक बार हम पावलोवा में रहते थे और एक बार अमरगिरी जी और मैं मिलने के लिए महाराज जी के पास विपुल में गया था। हमें पता लगा कि महाराज जी आए तो हम गए दर्शन के लिए, तो महाराज जी ऐसे एक कोने पर ऐसा तकिया पर ऐसा हाथ लगा करके
महाराज
ऐसे पहली फोटो है महाराज जी का, और उसी रूप में हमने देखा। परंतु हम गए उनका दर्शन किया, बैठे, उनको कुछ भी पता नहीं। 5-10 मिनट के बाद कोई भगत आया और उसने महाराज जी को कहा, महाराज जी ये अमरगिरी जी आए हैं पावलोवा से। आग खुली थी महाराज जी, आग बंद नहीं थी। तो उस स्थिति को क्या कहोगे आप, अब बताओ। आंख खुली है, कान खुले हैं, हमें लग रहा था कि देख रहे हैं परंतु देख नहीं रहे, कान खुले हैं सुन रहे होंगे सुन नहीं रहे। पश्चन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रन स्नम गच्छन स्वपन स्वसन, ये श्लोक मेरे को उस समय महाराज जी को देख करके मुझे याद आया। मैंने कहा यही तो ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी के लक्षण क्या है, सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा है, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ करते हुए, क्यों वो है ही नहीं ना, वाण ही नहीं ना, देववान ही नहीं है, जीववान भी नहीं, रूपवान भी नहीं, गुणवान भी नहीं, ज्ञानवान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी जो स्थिति है उसी को ही तो ज्ञान कहा गया है और उसी को ही ब्रह्म कहा गया है। तो महाराज जी की ऐसी स्थिति का भी ऐसे 2-4 लोगों के अंदर मैंने ये अनुभव किया। हम जो भी संतों के दर्शन करते थे तो अपने संत के दृष्टि से ही हम देखते हैं कि इनके अंदर संतत्व कितना है। हम और आजकल लोग क्या देखते हैं कि इनके पास क्या देखते हो आप, किस संतों के पीछे जाते हो,
घनत्व कितना है,
घनत्व बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शब्द बढ़िया दिया, घनत्व मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हम घनत्व को देखते हैं, देखना क्या चाहिए, वो दृष्टि नहीं हमारे अंदर आ रही, क्यों नहीं आ रही। बहुत कुछ विचार है और आप कल से बात कर लेंगे। हाँ, अभी आनंद कथामृत का यह विमोचन हो रहा है, आप लोग देख लो। और देखो, ऐसे ग्रंथ का संग्रह जीवन में आ जाता है तो तुम पढ़ो या न पढ़ो, परंतु इस ऐसे ग्रंथ को देख करके भी तुम्हें आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे ग्रंथों को देख करके, और लक्ष्य क्या है तुम्हारा? पढ़ोगे तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु देखने से, दर्शन मात्र से भी आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ही तो सभी जीवों का लक्ष्य है, समझे ना? इसलिए इस उत्सव को आनंद उत्सव भी कहा जाता है। तो आज ये आनंद कथा अमृत, आनंद की जो कथा है, और यही क्या अमृत है? वास्तविक तो आनंद ही अमृत है और अमृत ही आनंद है, कोई भेद नहीं है, परंतु बीच में एक कथा आ गई है। क्या आ गई है? अमृत में और आनंद में कोई अंतर नहीं है, आनंद ही अमृत है, क्योंकि वो कभी मृत होता ही नहीं है, उसके अंदर अविद्या नहीं है। मृत क्या है वस्तु? मृत है अविद्या, अविद्या का नाम ही मृत्यु है, अविद्या व मृत्यु। तो जिसके अंदर अविद्या नहीं है उसी को ही आनंद कहा जाता है और वही अमृत है। परंतु उस अमृत की, उस आनंद की जो कथा है, जो वाणी के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना, उस आनंद को अभिव्यक्त करना, ये आनंद की अभिव्यक्ति है, अमृत की अभिव्यक्ति है, उसी को ही, इसीलिए उसको कथा कहा। कथ्यतिथि कथा, जो कथन किया जाता है उस आनंद का ही वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाता है, उसी का नाम क्या है? कथामृत कहा जाता है। तो आज ये पुस्तक का भी विमोचन हो गया है। और जैसे गिरीश भाई ने कहा है, वो ऐसा वो हाथ का आता है नहीं, एक ऊपर का, गणित पूर्ण करना है तो क्या करना पड़ता है? आप लोग जानते हैं गणित, गणितज्ञ लोग एक ऊपर का करते कि ऊपर का लेना है। तो हम तो ऐसे हमेशा के लिए हमने बोल दिया है, हमने कहा जब भी जरूरत पड़ेगी, हमें यदि शरीर के द्वारा थोड़ा सा लाचार हो गया तो बात दूसरी है, परंतु हमने ऐसे लाचारी में भी आता का यहां का सत्संग नहीं छोड़ा। आप लोगों को याद होगा सन 6 में मैं इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में था, और लोग कहते थे कि स्वामी जी का तो कोई भरोसा ही नहीं था, हमने तो कभी अपने को ऐसा समझा ही नहीं, और बीमार भी मैंने अपने को नहीं समझा, शरीर को देखा, और वास्तविक उसमें जो हमने वेदांत के चिंतन का जो वास्तविक फल है उस स्थिति में मैंने अनुभव किया। और ऐसी स्थिति में भी जब मैं यहां, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि स्वामी जी आपको 3 महीने आप बिस्तर से उठना नहीं है और कुछ बोलना भी नहीं है आपको, हमने कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो अगले महीने में कथा करना है प्रेमपुरी में, मेरा फरवरी और मार्च से 2 महीना था यहां सन 6 में, हाँ नहीं 7 में, 7 में, 6 में तो मैं भर्ती हो गया था, नहीं 6 की बात है, 6 की बात है, 7 की नहीं, 6 की बात है। अब मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे अगले महीने में, मतलब जनवरी में भर्ती हुआ था और फरवरी में हमने कहा मेरे को कथा करना, कहा कि स्वामी जी शक्य नहीं है, आप चले उठे नहीं सकते हैं, और उस समय बोल भी नहीं पाता था मैं, स्थित भोजन भी दूसरे लोग लड़के मेरे को कराते थे, हाथ भी नहीं उठ सकता था। और जब हम छुट्टी मिल गई फरवरी में और पार्ले में आए तो मंडलेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी आपको कहीं 6 महीने तक यहां से हिलना नहीं, हमने कहा स्वामी जी ये तो नहीं हो सकता है, हमने कहा मेरे को मार्च में तो कथा करने जाना ही जाना है मेरे को प्रेमपुरी में। कहा कि क्यों स्वामी जी दुराग्रह करते हैं? हमने कहा कि हम उस दुराग्रह के कारण तो सब छोड़ चुके हैं, सबको छोड़ा किसके लिए है? हमने कहा क्या होगा स्वामी जी, लास्ट तो बताइए कि आखिर क्या होगा, कथा करते करते मर जाएंगे, लास्ट तो मृत्यु है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना, शरीर जाएगा ना, हम तो नहीं जाने वाले, परंतु शरीर जाएगा तो शरीर जाना ही जाना है, वो तो आज नहीं कल जाना ही, परंतु कथा करते करते यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा होगी बुरा होगा? हमने कहा मैं तो जाऊंगा, और वास्तविक मैं आया। स्वामी जी ने मना करने के बाद देखा कि स्वामी जी कहीं निकल गए, तो मैंने दूसरी की गाड़ी मंगाई, एक कर्नल था, उस कर्नल की गाड़ी गोरेगांव से मंगाई और उसको हमने कहा कि आप तुरंत फटाफट मेरे को उठाओ और ले चल प्रेमपुरी में, और दो आदमी मुझे उठा करके लाए थे यहां। और कथा में भी शायद गिरीश भाई आते थे ना उस समय, गिरीश भाई आते थे, देखा दो आदमी मेरे को उठा करके चला भी नहीं जाता था, बराबर वाकर लेकर चलता था मैं उस समय। ये शक्ति किसकी है? क्या ये शरीर की शक्ति से होता है? इस शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर भी है वो शक्ति, उस शक्ति को जागृत करो, समझो, यही जीवन की साधना है। मैं बहुत बहुत आज सोमदत्त जी का, हमारे गिरीश भाई का, चिमन भाई का और आप लोगों का भी, सभी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मुझे अवसर दिया। तो इतना ही कह करके मैं पूज्य महादास श्री के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, और बहुत टाइम भी आप लोगों से हमने ज्यादा लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ये आराधन महोत्सव वृंदावन में 21 तारीख से 27 तारीख तक मनाया जाएगा, तिथि के अनुसार महाराष्ट्री का, ये भी एक सूचना है आप लोगों के
पास। हरिओ
महाराष्ट्री को हम क्या कितना धन्यवाद करें अध्यक्ष पद,
कोई धन्यवाद नहीं करना भाई, धन्यवाद किसका किया जाता है।
ठीक है,
अच्छा ये लगा कि आज द्वैत में अद्वैत की बात हुई।
द्वैत में हूँ द्वैधी, द्वैत में
एक में एक एक, एक अनुभव, एक अनुभव की बात थी और एक अनुभूति की बात थी। और जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने पचाया है और हमने जीवन उनसे सुनकर सजाया है, फर्क इतना ही है।
बहुत बहुत अच्छा।
तो ऐसे समय को देखते हुए और कल से पूज्य महाराज जी द्वारा, अद्वैतानंद जी महाराज द्वारा प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन का हमें लाभ मिलेगा। हम फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे जगदीशपुरी जी महाराज जल्दी जल्द हमारे बीच में, दो चार रोज में आ जाए, अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।